सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट पर संसद में प्रधानमंत्री के संबोधन पर। इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल जी। प्रभुदयाल जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
पश्चिम एशिया में अभी जो संकट चल रहा है उस पर भारत का आधिकारिक रुख क्या है, क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
देखिए, पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट पर भारत का आधिकारिक रुख संतुलित, कूटनीतिक और शांतिपूर्ण है, जो संवाद, संयम और नागरिकों की सुरक्षा पर जोर देता है। सरकार ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी पक्षों के साथ संपर्क बनाए हुए है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, तो भारत का रुख शांति समर्थक है, न कि युद्ध समर्थक, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी के साथ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस संकट के समय देश को एकजुट रहने की जरूरत है।
जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं अधिक है, इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।
प्रभुदयाल जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी, क्या हम इससे ये अर्थ निकाल सकते हैं कि भारत एक दीर्घकालिक वैश्विक संकट के लिए अपनी नीतियों को पुनर्गठित कर रहा है?
भारत एक दीर्घकालिक वैश्विक संकट जैसे पश्चिम एशिया संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति बाधाओं की संभावना को देखते हुए अपनी नीतियों में व्यापक बदलाव कर रहा है। सरकार का मुख्य ध्यान अब केवल तत्कालिक राहत पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस और आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री जी ने कच्चे तेल और गैस उर्वरों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा की है, विशेषकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे संवेदनशील मार्गों पर तनाव को देखते हुए। विशेषज्ञों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के विस्तार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर्स, इन सब में रणनीतिक लचीलापन की योजना की वकालत की है। भारत युद्ध को केवल एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित कर रहा है।
और प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि ये स्थिति चिंताजनक है और वैश्विक शांति के लिए चुनौती है। भारत की शांति और संवाद की अपील को आप कूटनीति के दृष्टिकोण से कितना प्रभावी मानते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पश्चिम एशिया को संकट को चिंताजनक और वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया, ये बिल्कुल ठीक है। भारत की जो एक जिम्मेदार और सक्रिय कूटनीति को भी ये दर्शाता है। ये युद्ध का नहीं, संवाद का युग है। ये संदेश के माध्यम से तटस्थता, मानवीय सुरक्षा और संघर्ष के समाधान के लिए एक विश्वसनीय सेतु के रूप में जो भारत की कूटनीति को प्रभावी सिद्ध किया जा रहा है वो भी इस बात को दर्शाता है। भारत ईरान और इसराइल के बीच जो ये तनाव हो रहा है तो उनमें एक सीधे संवाद न होने पर एक ब्रिज बिल्डर के रूप में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संदेश वैश्विक मंच पर गूंज रहा है जो तत्काल तनाव कम करने और बातचीत यानी डी एस्केलेशन पर जोर देता है। भारत जो है वो पश्चिम एशिया के संकट में दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर खड़ा है, न कि किसी एक गुट का हिस्सा। भारत न केवल विश्व शांति बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और वहां रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं यानी इंडियन डायस्पोरा उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।
अभी जैसे आपने ऊर्जा सुरक्षा की बात की है और प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताओं को रेखांकित किया।
भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है, साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है।
प्रभुदयाल जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बातें सुनी हैं, आपकी राय में इस दिशा में सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कितने प्रभावी साबित होंगे?
प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और सुरक्षित व्यापार मार्गों को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद ट्रेड ऑफ हॉर्मुज जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने और सप्लाई चेन्स को अबाधित रखने पर जोर दे रही है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। भारत अब 41 से अधिक देशों से ऊर्जा को आयात कर रहा है जो पहले 27 देशों तक सीमित थे। संकट के समय के लिए भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जिसे 64 लाख मीट्रिक टन से अधिक तक बढ़ाने का कार्य जारी है। 2030 तक जो 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से और ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सब प्राथमिकता है हमारी सरकार की। परमाणु ऊर्जा और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना मुख्य लक्ष्य है। तो जो संकट पैदा हो रहे हैं उनसे लड़ने के लिए जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक है।
सरकार उच्च स्तरीय बैठकों और लगातार समीक्षा के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक रखने की रणनीति पर काम कर रही है, जो काफी दूरदर्शी है। जैसे पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग जैसे कदम तो पहले से ही उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख भी किया।
पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी, आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच गए। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
हम अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा जो वैश्विक नेताओं से लगातार संवाद और संपर्क बनाने की बात की जा रही है उसे आप भारत की सक्रिय कूटनीति के रूप में कैसे देखते हैं?
देखिए, जो भारत वैश्विक नेताओं के साथ लगातार संवाद और संपर्क बनाए रखे हैं, ये एक बहुत सक्रिय और संतुलित कूटनीति को दर्शाता है। ये कूटनीति राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक शांति, आर्थिक हितों जैसे ऊर्जा आपूर्ति और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और ये एक मजबूत व निर्णायक भारत की छवि प्रस्तुत करती है। तो पीएम मोदी विकासशील देशों की आवाज को प्रमुखता से उठाते हैं और समावेशी विकास पर जोर देते हैं, तो ये सक्रिय शैली इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट के दौरान अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है।
आइए सुनते हैं कि कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय के युद्धों के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रूपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रूपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई।
क्या ये कहा जा सकता है कि इस संकट के दौरान भारत ने न सिर्फ अपने हितों की रक्षा की है बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भी उभरा है?
ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि वर्तमान वैश्विक संकटों जैसे युद्ध, आर्थिक उथल पुथल सबके दौरान भारत न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है जो भू राजनीतिक स्थिरता में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौते किए बिना वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्रिय भागीदारी निभाकर एक स्थिर शक्ति यानी स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में स्थापित हो रहा है।
प्रभुदयाल जी, आपकी दृष्टि में इस दिशा में अभी और क्या किए जाने की आवश्यकता है?
देखिए, जो स्थिति है वो तो रोज रोज बदल रही है। अभी जब एक तरह का समाचार आया कि ट्रंप ने ये कहा है कि वो ईरान को 5 दिन की मोहलत देता है बातचीत के लिए, तो वो जो उनपे अटैक करने जा रहा था ईरान पे वो रोक दिया गया है। तो ये हालात वक्त वक्त पे बदल रहे हैं और ये जरूरी है कि भारत इन सब बदलती हुई परिस्थितियों पर पैनी नजर रखे और ये देखे कि हमारे हित कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं।
प्रभुदयाल जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में